परंतु कृष्ण भक्ति रस ऐसा है जिस अपान करते हुए किंचित मात्र प्रवेश हुआ है, न तो हृदय कभी सुखिया और न ही किसी प्रकार के दूसरे रस में आसक्ति बनेगी। संसार में सर्वश्रेष्ठ है कृष्ण भक्ति रस, इसलिए कृष्ण भक्ति रस में डूब जाए। इसी कारण चैतन्य महाप्रभु ने ये परम उदार अवतार के अवतार में उन्होंने करुणा का विस्तार किया। भगवान ने संसार में सृष्टि रचना की, प्राणी जगत में जीवों को प्राणी शरीरों में भेजा, उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में मनुष्यों को बनाया। केवल निरंकुश मनुष्य नहीं, उनके अंदर में रस भावना को दी जो और प्राणियों में किसी में नहीं मिलेगा। जैसे देखा जाए इस संसार में हम लोगों की भावना कैसे बटी हुई होती है। घर में कोई व्यक्ति आया है, उनको बड़े शांत भाव से गंभीर भाव से बातें करते हैं, आसन देते हैं, पानी देते हैं और वार्तालाप भी होते हैं, तो इसमें क्या भाव निकलता है? शांत भाव। अपने गुरुजनों के प्रति जो सेवा की भावना है वो दास्य भाव है। बंधु बंधु मित्र मित्र मिल जाए तो गले से गले लगाते हैं, और अपने बच्चों के प्रति लाड़ प्यार स्नेह ममता है या नहीं, यह वास्तव भाव है। पति पत्नी का जो मधुर संबंध है इसको मधुर भाव कहा जाता है। तो भगवान ने मनुष्यों को बनाया तो उनके अंदर में यह भावना भी दी है, इसलिए तो हम संसार में जी रहे हैं। परंतु तो हमारी भावना आज बिखरी हुई है, अशुद्ध है, भौतिक प्राणियों के प्रति भावना बह रही है। वही भावना जब हम भगवान के प्रति लगा दें, हमारे जीवन का मोड़ कृष्ण की ओर लग जाए, उनके प्रति हमारी निष्ठा भावना हो, तब वही शुद्ध हो जाता है और परिशुद्ध होकर के प्रेम के रूप में परिणत होता है। वही शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और मधुर भाव आ जाता है। इसलिए प्राणियों में मनुष्यों में ये भावना तो भगवान ने दी है, परंतु हमने उसका अपव्यवहार किया, गलत जगह प्रयोग किया। भगवान ये भले ही भगवान ने सृष्टि रचना की, प्राणियों के द्वारा प्राणियों के अंदर में स्नेह ममता प्रति जगा करके प्राणियों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि की और प्राणियों के द्वारा प्राणियों का पालन किए और प्राणियों के द्वारा प्राणियों का संहार भी करवाते, वे काल आत्मा है, काल रूप में सबको परिचालना करते हैं। परंतु मनुष्यों में जो भावना की है, उस भावना को यदि हम भगवान में उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दें, यही जीवन में शुद्ध होता है। इसलिए श्री रामानंद जी ने जब महाप्रभु जी ने यह बात कही, कृष्ण भक्ति रस में विवाहित ऐसे कोई रसिक संत मिल जाए, उनके चरणों में जीवन का नौछावर कर दें, तब जीवन का मोड़ घूम जाएगा। करोड़ों जन्म तक साधना करते हुए जो भाव की प्राप्ति नहीं होती है, वह व्रत के व्रत का जो भाव है कि शुद्ध भाव भक्तों के हृदय में प्रकाशित हो जाता है। उस जगत का जो भाव है भक्तों के हृदय में आता है। भगवान की भक्ति कैसे हो? एक प्रीतिमूला भक्ति, प्रीति को भी दो भाग से विभाजित किया गया, एक संभ्रम भाव युक्त भक्ति और एक निस्संग भाव युक्त, जहां पर निस्संकोच भाव से प्रीति हो कोई संभ्रम संकोच नहीं है, इस प्रकार के प्रति। और जहां संभ्रम संकोच से युक्त होकर डरे हुए कुछ भक्ति करते, भगवान कृष्ण ने देखा जगत के लोग मेरी भक्ति करते हैं, पर तो इस भक्ति में मैं तृप्त नहीं हो पाता। बोले क्यों? ऐश्वर्य स्थिति प्रेमे नहीं मोर प्रीत। जहां पर ऐश्वर्य भाव, प्रभु का ज्ञान, भगवान को फूल जल तुलसी चढ़ाना होता है, बताशा देना होता है, दे दिया, परंतु कोई प्रीति नहीं, कोई आदर नहीं, कोई श्रद्धा नहीं। मंदिर बने हुए हैं, मंदिर की नगरी है, यहां तो मंदिरों की नगरी जम्मू है, परंतु मंदिरों में वास्तविक क्या प्रतिपूर्वक सेवा होती है? भगवान कृष्ण कहते हैं लोग तो हमें फूल जल तुलसी बताशा और इलायची का भोग लगा देते हैं, बताशा भी चढ़ा देते हैं, बोधी की दोना भी दे देते हैं, पर हम उससे तृप्त नहीं होते। हाँ, मेरी प्रतिज्ञा है ये यथा माम प्रपत्तम देता भजा मुझा हूं, जो जैसे जिस रूप में मेरा भजन करता है मैं उसे वैसे ही उसी रूप में भजन करता हूं। भगवान कोई स्वार्थी नहीं है, निस्वार्थ प्रेमिक है। इसलिए भागवत के भगवान श्री कृष्ण वे निस्वार्थ प्रेमिक होकर के ये क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों का पराधीन हूँ, वे मेरे हृदय हैं, मैं उनका हृदय हूँ, वे मेरे बिना किसी को नहीं जानते, मैं भी उनके बिना पर किसी को नहीं जानता। इस प्रकार जो भक्त अपना हृदय सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, भगवान भी ऐसे भक्तों को अपना लिए हैं। और वे कहते हैं जिन्होंने पुत्र परिवार घर संसार बंधु बांधव धन दौलत विषय संपत्ति ये सब के प्रति मोह आसक्ति को तोड़कर जिन्होंने हमारे चरणों में अपना सर्वस्व दे दिया है, मैं ऐसे भक्तों को कैसे छोड़ सकता हूँ? कथम ताम तत्व सहे, मैं कदापि उनको छोड़ नहीं सकता। इसलिए मेरे जीवन की प्रतिज्ञा है कि ऐसे भक्तों की मैं भी सेवा करता हूँ। भगवान केवल सेवा लेते हैं, सेवा देना नहीं जानते, ऐसी बात नहीं। कोई व्यक्ति भगवान से ये माला पहनाता है तो भगवान क्या करते हैं, लाखों माला उनके गले में डलवा देते हैं, सारी दुनिया उनके चरणों को पूजते हैं। ऐसे जो संत पुरुष देखिए आज आपके सामने विराजमान हैं, सारी दुनिया सारा विश्व जिनके चरणों में लौट रहे हैं और सभी लोग उनकी पूजा करते हैं, अपने कल्याण की कामना करते हैं। क्या इन संतों ने क्या किया? भगवान के चरणों में अपना मन प्राण हृदय प्राण सर्वस्व नौछावर कर दिया। भगवान को कोई एक फूल चढ़ाता है, सारे संसार के लोग उनके चरणों में पुष्पांजलि देते हैं। भगवान कहते हैं कोई मुझको एक दाना अन्न भी मुझको कोई खिलाता है, सारा संसार उनको खिलाता है, कोई अभाव नहीं देता है। सारी दुनिया के लोग संसार के पीछे माया के पीछे भागते हैं और सारे लोग माया को विषय को धन दौलत को छुपाकर भगवान की ओर चलते हैं, सारा संसार उनके पीछे पीछे दौड़ता है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं ऐसे माया के पीछे दौड़ करके क्या होगा, भगवान के पीछे दौड़े, उनके चरणों की ओर चले। माया के पीछे दौड़ते दौड़ते हमारी बुद्धि बहुत संकीर्ण हो गई, हमारा हृदय बहुत छोटा हो गया है और हम इतने छोटे इतने क्षुद्र बन गए जो कि हमारी कोई गिनती भी नहीं, घास भूसे की तरह चला और घास भूसे में हमारा जीवन चला जाता है। इसी तरह से माया है, परंतु इस संसार रूपी बगीची में जो हम फूलों के जैसे खिल रहे हैं, ऐसे हमारे जीवन पुष्प को कोई संत महापुरुष कृपा करके उठा ले और भगवान के चरणों में समर्पण कर दे, उसी से वास्तविक कल्याण, जिस समय हमारा जीवन पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित होगा। इसलिए भगवान ने क्या बताया, मैं उससे तृप्त नहीं होता, ऐसे पूजा से मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति ऐ भवि जई मोर करे शुद्ध भक्ति। कोई व्यक्ति भगवान को अपने पति से व्यास, अपना पुत्र मानकर, अपना सखा मानकर, अपना प्रियतम मानकर के सेवा करता है, मैं ऐसे भक्ति से प्रसन्न होता हूं, उनके अधीन बन जाता हूं, इसलिए भगवान को बहुत पाता है। रसिक भक्त ही पाते जिनके हृदय में रस की भावना जागृत हुई, ऐसे भक्त ही प्राप्त करते हैं। इसलिए जिनके अंदर ये भावना जागृत हुई है, ऐसे व्यक्ति भगवान को प्यार करते हैं। भक्ति क्या है? अनंत ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। जहां पर भगवान में अनंत ममता हो, प्रीति हो, आदर हो, उनको खिलाए बिना हम खा नहीं सकते। किसी को बच्चे की भावना हो, बालक की भावना है, भगवान को पुत्र रूप में पुत्र भाव में भावना करते हैं और सेवा करते हैं, क्या उनको खिलाए बिना आप खा लेंगे? कोई अपने बच्चों को खिलाए बिना कोई माता पहले खा लेती है? कदापि संभव नहीं, पहले बच्चों को खिलाते हैं। इसी तरह से भगवान के प्रति आदर होगा तब हम उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, उनकी हम सेवा करेंगे, तब हमारा जीवन आनंदमय प्रेममय होगा। इसलिए श्री रामानंद जी ने शांत दास सख वात्सल्य और मधुर इन पांचों रसों का एक एक करके वर्णन किया। शांत रस के भक्त जैसे शरद सरंदर सनातन शरद कुमार आदि ऋषि लोग होते हैं, वे क्या करते हैं? कृष्ण ही कनिष्ठ समो अनिष्ठता गुणे, कृष्ण के प्रति वे भगवान है, पर ब्रह्म है, परमात्मा है, परमेश्वर तत्व ज्ञान से भरपूर है, उनके लीलाओं का चिंतन करते हैं। इत्थान सताम ब्रह्म सुखान भूत्या, ब्रह्म सुख की अनुभूति हृदय में उनको अनुभव करते हुए आनंद में खोए हुए, ऐसे संत पुरुष सामने चार हाथ मात्र उनकी अर्ध मुद्रित नेत्रों में दृष्टि पड़ती, इस प्रकार भगवान में आविष्ट रहते हैं। कोई व्यक्ति उनके हाथ में कोई भोजन सामान्य दे जाए, पूरी चटनी रख दिया जाए, कोई दे दे, उन्हें पता नहीं कि किसने दिया, और कौआ आकर के उठा के ले गया, वो भी पता नहीं किसने ले गया। इस प्रकार भगवान में आविष्ट है, उन्हीं में तन्मय है, ये शांत रस के भक्त होते हैं, परंतु इनमें कोई सेवा नहीं होती। इसलिए जिनके अंदर में सेवा की भावना है वो श्रेष्ठ है दास रस के भक्त, जिनमें ममता है और सेवा की भावना है दास रस के भक्त एक प्रकार के होते हैं, जो ऐश्वर्य भाव से और एक ममता युक्त प्रीति भाव से विश्रम भाव से दो प्रकार के दास रस वाले होते हैं। इससे आगे सख रस वाले, सख में भी जैसे पांडवों में सख भाव रहा है, इतनी प्रियता प्रगाढ़ता प्रगाढ़ संबंध, अर्जुन जो कुछ कहते हैं कृष्ण वही करते हैं, या कहे बिना वे अपने आप काम करते हैं, जैसे रथ के सारथी बन गए कि घोड़ों को भूख लग रहा है तो उनको खाना खिलाना, पानी पिलाना, यहां तक कि घोड़ों का पैर दबाना पड़ेगा, थक गए हैं घोड़े, ये सब कुछ कर रहे हैं सारथी बन करके। क्यों? हमारे भक्तों के घोड़े हैं, हमारा प्रिय अर्जुन अर्जुन के रथ के घोड़े हैं। इस प्रकार भक्तों के प्रति इतनी प्रियता है कि भगवान भक्तों की सेवा करने के लिए तरसते, हम क्या सेवा करें, कैसे हम भक्तों को प्रसन्न करें। सब कुछ दे करके भी फिर भी मांगते और क्या हो, जिससे सब कुछ परिपूर्ण हो जाए। और भगवान भक्त क्या देखते हैं, हम भगवान को किस रूप में सेवा करें, हमारे प्रभु को हम कैसे प्रसन्न करें, वहां पर प्रेम होता है। एक दूसरों में जहां प्रियता की भावना है, सेवा की भावना है, वहां पर प्रियता, वहां पर भावना होती है। अर्जुन के सख और ब्रज के सख में भी बहुत अंतर हो जाता है। जैसे गीता में भगवान ने जब विराट रूप दिखाया विश्वरूप, उस स्वरूप को दर्शन करते ही अर्जुन तो एकदम घबरा गए और हाथ जोड़ करके स्तुति प्रार्थना करने लगे। सखे की वक्ता प्रसभा जदुत्तम, हे कृष्ण हे जादव हे माधवी जी, हे कृष्ण मैंने आपको सखा कह करके कितना हास परिहास किया। कृष्ण कहा हे जादव हे माधव क्या नहीं बताया, बहुत तरह की रस भरी बातें और मजाक की बातें बहुत कुछ सुनाया, इसलिए आप हमें क्षमा करें, हमारी गलती हो गई, हम समझ नहीं सके। इस तरह से अर्जुन के अंदर में भी डर भय संकोच संभव बुद्धि आ जाता है। परंतु ब्रज के सखाओं में अरे तुम्हें कौन बड़े लोग, तुम्हें आप ही समो, तुम कौन सा बड़ा आदमी है, तुम और मैं समान, तुम्हारे पास तुम्हारे पिताजी के 9 लाख गाय हैं तो हमारे पिताजी के भी 11 लाख गाय हैं। हाथ पकड़ करके खींच लेते सीधा सुबल आदमी, सखा लोग उनके साथ में खेलते हैं, धूल झोंकते हैं, झुकाते हैं। इसलिए भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा इत्थम सताम प्रभु सुखानुभूत्या दशम गतानां परदैवतेन मायास्तकानां नरदातकेन श्राद्धं विप्रभु कृतपुण्य पुण्या। सखाओं को कितना सौभाग्य था, जन्म जन्म के पुण्य पुण्य सुकृति, जिस सौभाग्य के बल स्वरूप आज कृष्ण के सखा बनकर के वन विहार कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, कृष्ण उनके साथ आनंद का अनुभव कर रहे हैं, इस सख प्रेम का आस्वादन करते हैं। इसलिए इनका जैसा सौभाग्य और किसको होगा। दुर्वासा ऋषि जैसे ब्रह्म ज्ञानी पुरुष पहुंच गए, बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया खेल रहे हैं सखाओं के साथ, बच्चों के साथ खेलते खेलते धूप झोंक रहे हैं, झुटा रहे हैं, मिट्टी में डाल करके ऊपर से बालू डाल रहे हैं। ऐसे समय में कृष्ण कन्हैया दौड़ते हुए दुर्वासा मुनि के पास में पहुंच गए। बोले कि साधु बाबा आप बताओ हम लोगों में कौन हारा है, कौन जीता है। दुर्वासा जी सोचने लगते क्या यही परब्रह्म गोपाल, यही स्वयं भगवान या कोई साधारण बालक ऐसे खेलकूद कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जवाब भी नहीं दे पा रहे, स्तंभित हो गए, शुद्ध बुद्ध खो बैठे। ऐसी जड़ता आ गई कि दुर्वासा जी वहीं पर खड़े खड़े के बैठ गए, जैसे ही बैठे और कृष्ण कन्हैया तो गोदी में चढ़ गए, चढ़ करके दाढ़ी पकड़ करके बोले कि वो साधु बाबा बोलो ना तुम ढूंढा है क्या, बोलता क्यों नहीं है, हम लोगों में कौन खतरा नहीं कौन देता। तब तक भी बोल नहीं पाए, उस समय में देखते हैं कृष्ण के खरविंद में प्रवेश कर गए और अंदर जाकर के सारा विश्व ब्रह्मांड को देख रहे हैं, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र नाद नदी समुद्र पहाड़ पर्वत संपूर्ण ब्रह्मांड में घूम करके आए। घूमते घूमते हुए फिर वही आ करके जैसे उपस्थित हुए देखा क्या रे मैं तो यहाँ ब्रज गोकुल में ब्रज में बैठा हुआ हूँ, कृष्ण हमारे सामने खेल रहे हैं, ये तो परब्रह्म गोपाल स्वयं भगवान है, ये साधारण बालक नहीं। उस समय हृदय में उनका चिंतन करते हुए ब्रह्म सुख की अनुभूति ध्यान लगा रहे आनंद में खोए हुए, ऐसे ब्रह्म सुख संपत्ति में डूबे हुए हैं। दास आराम पहले दस रस के भक्त दे उनको समझ रहे कि हमारे परम देवता है, और साधारण मनुष्य सोच रहे हैं कि ये हमारा जैसा बालक है वैसे ये नंद जी का बालक है, इस तरह से समझ रहे हैं। किंतु जो भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम ब्रज विलासी ब्रज बिहारी वृंदावन के वनों में वन वन में भ्रमण करते हुए वन विहार कर रहे हैं, सखाओं के साथ में खेल रहे हैं, कितने पुण्य पुण्य सुकृति और सौभाग्य है। इस प्रकार उनके सखाओं के सौभाग्य का वर्णन करते हुए दिखाया कि ये सखाओं का कितना प्रेम है। और इससे आगे जबकि महाप्रभु ने कहा यो है आगे कहा आगे की बात कही, उस समय श्री रायमंद जी ने वास्तव प्रेम का वर्णन किया कि नंद और यशोदा जी को नंद महाराज तथा माता यशोदा जी को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है ऐसा सौभाग्य तो और किसी को नहीं है, जो कि नायाम सुखा को भगवान दही राम गोपिका सुत ज्ञानी नाम चात्मभूताराम यथा भक्ति मता निहत माता मोरे पुत्र भावे करे लालन पालन अति हीन ज्ञाने करे कारण हर्ष। माता पुत्र भाव से लालन पालन करती है, छोटा बालक जान करके हीन ज्ञान से कभी कारण भाषण करती है, डांट पर लगाती है, कान बोलती है और रस्सी से बांध जब उन्हें बांध देती है तो उस समय कृष्ण कन्हैया डरते हुए रोते हैं कि कहीं मैया मारे नहीं। इस प्रकार वास्तव प्रेम में स्वयं बंधे हुए हैं। नायम सुखा को भगवान दही नाम गोपिका सुत कि यशोदा नंदन कृष्ण बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष जीवन भर सैकड़ों जन्म तक साधना करते रहे तो भी प्राप्त नहीं। बड़े बड़े योगी ऋषि जो हिमालय में पड़े हुए हों, लाखों वर्ष तक तपस्या करने वाले हों, ऐसे योगियों के लिए भी दुर्लभ संभव है। परंतु यथा भक्ति मतामी है भक्ति मान जनों ने जैसे प्राप्त किया, माता यशोदा ने जैसे कृष्ण कन्हैया को बांध दिया, शंकर जी तरस गए, नारद जी तरस गए, ब्रह्मा जी आए, मैं भी प्रजभूमि में आकर के तरस गए, प्रार्थना करते रहे अभवति धन्ना ब्रजगो रमण्य स्तनामृतम पिता अधिवते मुदा जासाम विभो वत्स तरात्मजात्मना जब तृप्त हत्या पथनाल मथरा। अहो ब्रज की गौ ने और माता ने कितने सौभाग्यवती हैं, अहो अति धन्ना अतिशय अतिशय रूप में सौभाग्यवती धन्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण केवल देवकी नंदन में ये तो प्रमाद है, असल में पुत्र है तो माता यशोदा के जो कि ब्रजविलासी है और यशोदा जी के दुलाल है, केवल माता यशोदा के ही वास्तव प्रेम का आस्वादन किया। इतना ही नहीं, ब्रज की जितनी माता है जिनके अंदर यह भावना है कि कृष्ण गोपाल गोपाल लोक में प्राप्त करो और गोदी में ले करके उनको दूध पिलाओ मक्खन खिलाओ, उन माताओं की जो भावना है उन्होंने उस भावना को ग्रहण की। गौ माताओं की गायों की भावना है, कृष्ण हमारे मधुरे बन जाते तो हमारा दूध पीता और मैं दूध पिलाता। इस प्रकार जिनके अंदर में स्नेह प्रीति ममता जित भावना है ऐसा अगाध वात्सल्य प्रेम, जिन गायों के स्तनों में वात्सल्य प्रेम के कारण इतना तृप्त अंधेरों गायों के स्तनों से दूध झरता हुआ जो कि चीर समुद्र को भर रहे हैं, जो सुरती गाय ऋग्वेद में यह भी वर्णन हुआ है जत भूरिसिंगा गावो, जहां पर बड़ी बड़ी सिंह वाली ऊंची ऊंची गायें, और यह भी वर्णन कर रहे हैं कि जत्र भूरिसिंगा गावो बहुत सी गुणों वाली गायें हैं। ऐसे जो गायों का लोक भगवान ने उन्हीं के नाम से अपना लोक का नाम दे दिया, गवाम लोक इदी गोलक गोलोक था गायों का, वो गोपी ब्रजजनों का लोक अपना सब कुछ उन्हीं को समर्पण करते हुए उनके घर के किसी के बालक बन गए, किसी के सखा बन गए, किसी के प्राण प्रियतम बन गए। इस प्रकार अपनी मालिकाना तर्क को छोड़ दिया कि मैं मालिक नहीं हूं, मैं गुरुधाम का अधिपति नहीं हूं, ये लोग हमारे घर के मालिक हैं, हम उनके घर के बच्चे हैं बालक। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रेम में जहां अपना सर्वस्व दे दिया, ब्रह्मा जी कहते जहां ब्रह्म मोहन लीला में भगवान ने एक बार ब्रह्मा जी को मोहित करते हुए भक्तों के प्रेम को आस्वादन किया और उनके प्रेम को बढ़ा दी और उन्हें अपूर्व चमत्कार वाली लीलाओं का दर्शन करा दिया, जो कि अहोति धन्ना गजगो रमन्य स्तनामृतम पिताम अधिपते मुदा बछड़े बने गए। जितनी गाय है उतनी गायों के बछड़े, लाखों करोड़ों गाय सबके बछड़े बन गए और जितने सखा है सभी सखा बन गए। इस प्रकार बन करके सबके घर गए और सबके प्रेम का आस्वादन किया, स्तनामृतम पिता अधिपते मुदा, जो अत्यंत आनंद के साथ उस स्तनामृत गायों के और माताओं के स्तन का पान किया, दुग्ध पान किया, जो आज तक बड़े बड़े यज्ञ होते रहे उन यज्ञों में वे तृप्त हुए या नहीं हुए इसका कोई किसी को भी जानकारी नहीं, परंतु तृप्त अध्यापनाथ मध्धरा आज तो बाल गोपाल श्री कृष्ण इस रूप में परिदृप्त हो गए। ऐसे ऐसे प्रेम माधुरी और चमत्कारिता का प्रकाश किए। महाप्रभु जी बोले यो है आगे कहा आज, जबकि और आगे की बात बताने की नहीं। उस समय से राय रामंत जी ने कहा इस वात्सल्य प्रेम से भी बढ़कर के मधुर प्रेम जो प्रियतम भाव है ब्रज गोपियों की जैसी साधना, चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा तो गोपियों के भाव को लाए। जहां पर ब्रज में उद्धव जी गए गोपियों के प्रेम को हिमालय सदृश देख करके चमत्कृत हो गए, उन गोपियों की चरणधर की प्रार्थना करते हुए वंदना करने लगे। ऐसे समय में उद्धव जी कहते हैं नायम श्रियो अंगज नितांतरते प्रसाद सर्जो सेता नलिन गंधरु चामुकुतो यन्य रासो सवे आस भुज दंडग्रीतकंठ लब्ध्वा शीशं जयुदगाद ब्रज सुंदरी नायक श्रियो अंगजौ नितांतरते प्रसाद। ब्रज गोपियों को जिस प्रकार सौभाग्य प्राप्त जैसा महान ऊंचा प्रेम ऐसा और किसी को नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुरी गुण माधुरी लीला माधुरी और वेणु माधुरी की मोहन चमत्कारिता जहां समस्त लक्ष्मियां मुक्त हो जाती हैं, नारायण कुछ छोड़ करके वे बेलवन में जाकर के तपस्या करती है कृष्ण के रास में प्रवेश करने के लिए, परंतु उनको भी प्रवेश अधिकार नहीं मिल पाया और अंततः रोती रही। कृष्ण ने कहा, लक्ष्मी जी ऐश्वर्य का अभिमान छोड़ो, छोड़ करके गोपी भाव लेकर के गोपी बन करके आओ, वो संभव नहीं। लक्ष्मी जी संपदा की अधिष्ठात्री देवी, वे कैसे छोड़ सकती हैं, इसलिए छोड़ने को तैयार नहीं। और कृष्ण कहते हैं, जहां पर प्रेम रस का प्रीति रस का आस्वादन करता हूं वहां पर ऐश्वर्य का क्या काम, वहां पर ऐश्वर्य का गंध तक प्रवेश नहीं हो पाता है, इसलिए कृष्ण उन्हें अपना नहीं रहे हैं। अंततः स्वर्ण रेखा के रूप में कृष्ण के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी विराज कर आती है, परंतु रास में गोपी बन करके रास नृत्य करके कृष्ण को आनंदित करेगी। जो प्रेम रस का प्रति रस का कृष्ण आस्वादन करते हैं वह संभव नहीं हो पाया, इसलिए उद्धव जी कहते हैं, नारायण श्रीराम जानो नितांत रति प्रसाद। अनंत भगवान के अनंत अवतार, अनंत अवतारों की असंख्य लक्ष्मियां हैं, ये सभी लक्ष्मियां किसी को भी प्रवेश अधिकार नहीं मिल पाया तो औरों की बात क्या, देवियां तो भगवान जा ही नहीं सकी। कमल के समान सुगंध अंग वाली ऐसी स्त्रियां तक प्रवेश नहीं कर सकी, औरों की बात ही क्या, जो कि राजो सभ्युजदंत गृहित कंठ। भगवान ने रास बचाया और रास रूपी उत्सव, उत्सव में सभापति का सर्वश्रेष्ठ आसन होता है और सर्व माननीय होता है, जो कुछ वचन कहें वही प्रामाणिक माना जाता है और उन्हीं का सर्वश्रेष्ठ आदर। भगवान श्री कृष्ण ने जिस ब्रजभूमि में जिस राष्ट्र में उत्सव को मनाया, उस उत्सव में एकमात्र ब्रज गोपियां सम्मान के पात्री बनी, जो सम्मानित हुई वहां और किसी का प्रवेश अधिकार नहीं मिल पाया। और उनको सम्मानित करते हुए कृष्ण ने क्या किया, संपूर्ण विश्व जगत जिस भगवान के करुणा के प्रार्थी हैं, सभी कृष्ण की आराधना करते हैं, कृष्ण से चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम में विवल होकर कहीं गोपियां मार करके रूठ करके चली न जाए, इसलिए कृष्ण स्वयं उनके अनुग्रह प्रार्थी बन करके आज उनसे कहीं मार न कर ले, इसलिए अनुग्रह की प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार कृष्ण ने जहां राष्ट्रपी उत्सव में गोपियों के प्रेम को बढ़ाया, मान मनाया और उनके महान प्रेम को ऊंचा किया, ऐसे गोपियों के भाव सर्वश्रेष्ठ है। महाप्रभु जी सुन करके प्रसन्न किए, बोले कि हाँ ये गोपियों का भाव है और ये उत्तम है, परंतु इससे आगे और भी मैं जानना चाहता हूँ। ये सभी बातें जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने रायरवंद से निकाली और इससे आगे चल करके राधा प्रेम का वर्णन करेंगे, संसार में सर्वश्रेष्ठ शक्ति विश्वानंदिनी श्री राधा है, उनसे बढ़ करके और कोई श्रेष्ठ शक्ति नहीं है, इसलिए उन सब के विषय में भी विचार है, जो कि आज समय अधिक बुरा है और गुरु जी के वचनामृत का हम लोग स्मरण करने की प्यासी है, इसलिए मैं अपने विशिष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं अपना वक्तव्य आपने
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वर्णन किया। ओम प्रकाश जी दो शब्द बोलिए। वहीं से बोलिए।
तो यह है सचमुच भगवान की सेवा। तो गोपी चंदन वहां धारण किए हुए हैं मुखमंडल के रूप में, गले में कंठी है, तो निश्चित रूप से हम जानेंगे और हमने सदगुरु का आश्रय ले लिया है वही यह यूनिफॉर्म कह सकता है, अन्यथा नहीं कह सकता। तो हम कहेंगे कि वास्तव में हम लोग भक्त हैं। आपने देखा होगा कि गली मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते भौंवा करते रहते हैं और उसमें उन कुत्तों में हम उनको मारने के लिए भागते हैं, डंडे से मार देते हैं, पत्थर से डंडे से, लेकिन जिनके जिस कुत्ते गले में बैंड बंधा हुआ है उस कुत्ते को हम लोग मारते हैं। और जानते हैं हमने इसको मार दिया तो ये कल ही इसका मालिक आसपास ही रहता है, वह कल कोर्ट में मार करेगा। इसलिए ये जो हमारे शरीर में जो ये बैंड है जो गुरुदेव देते हैं कृपा करके, यह तुलसी घंटी ये एक ऐसा बैंड है, एक ऐसी पहचान है, एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन है, इसके द्वारा यमराज के दूत जब आएंगे ना तो वह लौट जाएंगे। तो हमारी मृत्यु कहीं भी किसी भी जगह हो सकती है, सड़क पर, रेल में, बस में, हवाई जहाज में, घर पर, अस्पताल में, लेकिन दूत तो आएंगे लेने के लिए, वो दूत आपके स्वरूप को देख करके लौट जाएंगे। उनका साहस नहीं होगा कि उनको पकड़ ले जाए, क्योंकि यमराज ने कह रखा है दूतो तुम उस व्यक्ति को हमारे राज्य मत लाना जिसके गले में तुलसी कंठी पड़ी हुई है, जो भोजन लगाते हैं और जो भगवान के भक्त हैं, तो तुलसी के कंठी वही बनेगा जो भगवान का नाम लेता है। भगवान का नाम कहा जाता है कि एक बार किसे नाम ले लिया या एक बार जिसे भगवान की जोड़ों में नमन कर लिया उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह मातृ गर्भ में नहीं आता, वह माता का दूध नहीं पीता। किंतु एक बार नाम भी कैसा हो, रूप गोस्वामी ने बताया कि बिना किसी अपराध के उत्तम भक्ति के साथ में हो, अर्थात किसी अन्य भाषा शून्यम ज्ञान कर्मदा प्रथम, यह किसी प्रकार की हमारे हृदय में कोई अन्य अभिलाषाएं ना हो। यदि अभिलाषाएं हैं तो वह नाम नाम नहीं है, वह तो एक अपना स्वार्थ पूरा करने का साधन मात्र हो जाएगा। भगवान ने हमको बिना नाम के सब कुछ दे दिया, हम जिस उम्र के हैं यहाँ बैठे हुए हैं सब माताएं बहने हैं और व्यक्ति हैं, इनके घर में कोई अभाव नहीं है और उस अभाव की पूर्ति में होगी भी नहीं यदि है तो। सबके पास गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, मकान हैं, बच्चे हैं, अब हम लोग बिना मांगे मिल गए तो आपको हम विचार करें कि हमने पत्थर मांगा था नहीं मांगा था, मिल गया अपने आप, क्योंकि यह लाभ हानि यश अपयश आयु ये सब विधाता जो योग माया है वह जीव के गर्भ में आते ही और उत्पन्न होने के छठे दिन लग जाती भाग में तुमको इतना लाभ होगा तो अगर गाड़ी घोड़ी घोड़ा घोड़ी होगी नहीं होगी, मकान होगा नहीं होगा। इस प्रकार से हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, उस मिशन भोग के केवल दौड़ेंगे हम अपने आप को वंचित कर देंगे उस प्रभु की कृपा से। इसलिए अभी समय है, बहुत सारा समय मिल गया है, वो परम सौभाग्यवान है जिनकी आयु छोटी है वो अभी से भजन करें, तो अभ्यास करते करते हम अवश्य अंतिम सांस तक भजन कर सकते हैं। और ये समय है कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन, उनकी चरण धूलि, उनका चरणामृत, ये एक साधन है भक्ति में अक्सर होने के लिए। ये तीन धर्म कहे हैं, महापुरुषों का, गुरुदेव का, वैष्णवों का चरणामृत, उनकी चरण धूलि और उनका उच्छिष्ट। उच्छिष्ट से अर्थ एक ये भी है कि उनकी वचनामृत जो वो कहते हैं हम उनका पान करें, उनका आस्वादन करें और उनके ऊपर हम लोग अमल करें। तो यह वैष्णव का एक वेशभूषा है, हम इससे वंचित ना हो। यदि हम इससे वंचित हो गए हम कभी भी जीवन में ये जीवन बीत जाएगा और कोटि कोटि जन्म बीत जाएंगे, हम कुत्ते शुगर बिल्ली चूहा बनते रहेंगे, अपने हम कष्ट पाते रहेंगे। और कष्ट इस योनि में भी है, लेकिन कष्ट उनको नहीं है इस योनि में, मस्त योनि में जो भगवान का नाम करते हैं सचमुच में, वो चाहे गृहस्थी हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, घर नहीं बन कर रहते हो, उनको कष्ट एक जरा सा भी नहीं है जो भगवान का भजन करते हैं। हम अपना गृहस्थ रह करके भी कृष्ण का संसार कराएं। कृष्ण संसार कैसा होता है, हम जो कुछ कर रहे हैं इन क्रियाओं में कोई तब्दील करने का अवसर नहीं इस मत में, हम उस उन सारी क्रियाओं को, उन कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए करें हम जो कुछ उठते हैं जल्दी, हम जो कुछ करते हैं रात्रि उठते ही, इसलिए करते हैं कि दांत साफ हो जाए, इसलिए भगवान के मिल जाएंगे, भगवान को हमारे मुंह से दुर्गंध नहीं आए, स्नान इसलिए करते हैं, साबुन भी खरीदेंगे इसलिए खरीदेंगे कि हमको भगवान की सेवा में करना है, साबुन खरीदना, आटा दाल चावल खरीदना भगवान की सेवा के लिए, फूल खरीदना भगवान की सेवा के लिए, अपने शरीर के कपड़े भी खरीदना भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि कपड़े नहीं होंगे क्या हम जो है निरस्त होकर सेवा करेंगे भगवान की, अतः नहीं कर सकते। इस प्रकार से हमारी सारी क्रियाएं सारी क्रियाकला हमारे जीवन के हम उनको बोर्ड में खाली और उसी करना है, यह चल रहा है जीवन चलते रह दीजिए, किंतु उन सब कर्मों को भगवान की ओर मोड़ दीजिए, भगवान को समर्पित कर दीजिए, वह है सबसे बड़ी ये अपने जीवन बदलने का एक तरीका है। हम जा रहे हैं नौकरी पर, साढ़े बजे भोजन माने ठाकुर जी पठा पा लिया, हमने पाया, बच्चों ने पाया, पत्नी ने पाया, टीका करना वाला सौभाग्य है, तुलसी द्वारा भोजन करके ठाकुर जी को दे दिया और उस प्रसाद को पा रहे हैं, क्या प्रसाद पाने के सौभाग्य सबको प्राप्त होता है? जो होटलों में खाते हैं पीते हैं, होटलों या निचलों में खाते हैं, हवाई जहाज में खाते हैं, जहाँ खा लेते हैं, इनको प्रसाद महाप्रसाद भगवान का नहीं मिलता है, वो बड़े अभागे हैं वो लोग। लेकिन इन सारी शिक्षाओं से, इन हरी कथाओं से हम निरंतर गुरु वैष्णव का स्नान करते रहते हैं, कुछ बार महाराज से या कभी यहाँ आते हैं साल में एक बार, आप लोग भी वहाँ आते हैं कि चरणों में वृंदावन मथुरा गोवर्धन इत्यादि में हम सब गंगा सुनते रहते हैं, हमें अपने सदगुरुओं का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करें, अनुकरण एक हो जाएगा जो का खतरा है, अनुसरण करें जो वो कहें गलत काम करें, इसलिए ठाकुर जी को महाप्रसाद ग्रहण करके हम सब खाएं। आन की बात है, नौकरी पे जा रहे हैं 10 बजे, तो ठीक 10 बजे हम जा रहे हैं नौकरी सीधे जा रहे हैं, फिर भगवान की सेवा के जा रहे हैं, वहां से हमें मुद्राएं मिलेंगी 1 तारीख को, किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 5,000 रुपये, उन मुद्राओं को हम जो ठाकुर जी की सेवा में लगाएंगे। इसलिए अवस्था इस बात की है हम अपने सारे कर्मों को भगवान को मोड़ लें। तो संकेत हो चुका है, मैं स्वर्थ इच्छा तो बहुत थी बोलने की, तो कभी अवसर मिलेगा मैं बोलूंगा, मैं यही तक अपनी वाणी को साथ देता हूँ,
उससे और दुर्लभ है वो व्यक्ति जो इन मानव जन्म को सही उपज करता है। लेकिन इनमें से भी करोड़ लोगों से बहुत कम लोग जो सदगुरु के पाद पदों में आश्रय ग्रहण करते हैं। ये गुरुदेव कोई ऐसी साधारण वस्तु नहीं है, जो देव गुरु है और देव जो अपनी महिमा अपने गुण से बहुत गुरु है, अर्थात लघु नहीं है, उनमें लघु तो नहीं है, वो साधारण में नहीं है, इसलिए गुरु वस्तु समझना बहुत कठिन है, ये अचिंत्य है, ये अचिंत्य है, वहां चिंता के बरबाद है, कि भगवान की कृपा से ही कोई गुरुदेव को प्राप्त करता है, इसलिए कहा गया कि कृष्ण कृपा के गुरु हैं। कि गुरुदेव देव में उनका गुण ऐसा है, महिमा ऐसे सारा जगत में वो प्रकाशित होता है, वो अपने आप ही प्रकाशित होते हैं। जैसे भगवान की तरह कहते हैं, नाम प्रकाश सर्वस्य जोग माया समाप्त होता मुड़ो ये नाम ही जाना। जैसे भगवान सर्वत्र प्रकाश नहीं होते हैं, जोगमय शक्ति उनको आभूत करके रखता है, मूल लोग उनको नहीं समझ पाते हैं। इसलिए गुरुदेव को समझना बड़ा कठिन है कि वही व्यक्ति गुरुदेव को समझ पाता है, गुरुदेव की पादपद में आश्रय करता है जिसके कोई भगवान की कृपा हो, गुरुदेव की अपनी कृपा हो, ये तो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप लोग गुरुदेव की मुखारविंद से हरिकथा में श्रवण कर रहे हैं कि हरिकथा अमृत है। स्वर्ग में हम जानते हैं कि अमृत मिलता है, लेकिन वह अमृत भी पाने से जो लाभ होता है लोग अमृत तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो अमृत पे कोई मूल्य नहीं है। लेकिन गुरुदेव की मुखारविंद से जो हरिकथा में तो कोई पान करेगा, तो उसका जन्म जन्म है वो क्या लाभ होगा, हम की भक्ति गुरु की जागृत हो जाए। तो गुरुदेव एक बद्ध जीव को प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं कि दया क्या है, जिस जीव के विपरीत रुचि को परिवर्तन करके जब भगवत उन्मुखी करा सकते हैं, ये करना ही दया है, तो ये दया से गुरुदेव ही कर सकते हैं। गुरुदेव क्या करते हैं, ये लाखों जो तरह जन्म ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन भाग्यवान जीव, हम ब्रह्मांड भ्रमण कर रहे हैं, बहुत जनियों में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन इन सब जनियों में भ्रमण करते करते बहुत सौभाग्यवश ये मानव जन्म मिला है, लेकिन ये जन्म का सदगुरु की साक्षात होता है। गुरुदेव क्या करते हैं, उसके जो विपरीत रुचि है, जो भोग वासना है, जो अनंत कोटि जन्म में वो अपना इंद्रिय सुख कर रहा है, उसके रुचि को परिवर्तन करके भगवत उन्मुखी करा देते हैं। इसलिए महाजन भक्तिवेन ठाकुर ने कहा है, विषय जो रुचि है वे अच्छे हमार सही मत प्रीति हो चरण तुम्हार, ये बहुत साधारण वाक्य लेकिन इस बहुत गंभीर है कि जो रुचि हम लोग की विषय में है संसार में, वही रुचि को भगवत पादपों में ये करा सकते हैं कि गुरुदेव, गुरुदेव में वो शक्ति है। लेकिन जीव कैसे प्राप्त कर सकता है उसको, ये गुरुदेव की कृपा से सिर्फ ये भगवत उन्मुख हो सकते हैं, भगवान पादपों में रात्रि जागृत हो सकता है, ये तो नहीं। लेकिन वो कोई कह सकता है गुरुदेव हमारे पर कृपा नहीं करते हैं, इसलिए नारद मुनि साहब कहते हैं श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु, इस श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु, एक गुरुदेव करुणा की सागर है, तो भगवान भी करुणा की सागर है, क्या अंतर है। इसलिए कहते हैं रमदास ठाकुर अधम जनर बंधु, हमारे गुरु हमारे आचार्य कृष्णनाथ गुरु ठाकुर ने इसके टीका में बहुत सुंदर से लिखा है कि ये अधम जनर बंधु क्या है, एक गुरुदेव अगर करुणा देते हैं तो हम लोग क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्यों धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वो पात्र नहीं है, और पात्र में बहुत छेद है, इसमें भगवान गुरुदेव की करुणा हम लोग नहीं रख सकते हैं। लेकिन गुरुदेव अभिम जन बंधु बने वो पात्र भी देते हैं, इतना दयालु है गुरुदेव अपने, इतना जीव के प्रति इतना दयालु है। इस महापुरुष जैसे सचिनंदन बताया गया, सचिनंदन गोधरी इसे कलयुग के कलुषित जीव को अपना अनर्थ को साफ करके अपने गोद में ले लेते हैं, यही वात्सल्यता है भगवान में, सब जीव को अपनी गोद में ले लेते हैं। उत्तम अधम किछु न बचिल जाचिया दिलक कोल कहे प्रेमानंद एवं गौरांग उदय धनिया बोल, कि उत्तम अधम यज्ञ अयज्ञ विचार नहीं करते हैं भगवान, कृष्ण कर सकते हैं, कोई अन्य भगवत अवतार कर सकते हैं, महाप्रभु नहीं करते हैं, किसी को नहीं दंड देते हैं। अब लोग तीर्थ महाराज जी मुद्र से महाप्रभु के चरण त्रेता अमृत और समग्र भागवत की और बहुत कुछ श्रवण किया, उसमें हम देखते हैं कि महाप्रभु की करुणा अपार है, क्योंकि उन्होंने ये विश्व पतिता पाषण दी, किसी की उन्होंने दंड नहीं किया, वध नहीं किया, अति दूरवर्ती पतिता पाषण दी प्राणी न मारी लो कार्य हरिनाम दिया हृदय सुधिल जाची दिया हृदय। महाप्रभु क्या करते हैं, किसको दंड नहीं देते हैं, यहां तक कि कोई असुर है राक्षस है उसको वध नहीं करते हैं, उसका हृदय को शोधन कर देते हैं। महाप्रभु युद्ध सुगम कर रहे तो उसको शुद्ध बना रहे और उसमें प्रेम देते हैं। यही गुरुदेव है महाप्रभु के प्रकाश। इसलिए गुरुदेव यही करते हैं जीव के हृदय में चाहे उनके उत्तम हो अधम हो कोई बहुत योग्यता को योग्य अयोग्य विचार नहीं करते हैं। ऐसे भक्ति भाव है गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव की चरणाश्रय के बिना कोई कभी भी नहीं भक्ति प्राप्त हो सकता है। हमने जो कुछ भी श्रवण कर रहे हैं साध्य के बारे में साधन के बारे में जो कुछ भी है गुरुदेव की चरणाश्रय बिना कभी नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए अर्जुन भगवत गीता में कहते हैं द्वितीय अध्याय में कहते हैं कार्पण्य दोष उपज स्वभाव तुच्छामितं धर्म संमुचिता जस श्रेयम निश्चितं गृहीतं मे शिष्यस्तेऽहं साधिवान् त्वां प्रपन्नः। कहते हैं कृष्ण मैं कुछ निश्चय नहीं कर पा जीवन में मेरा क्या लक्ष्य है मैं क्या करूंगा कैसे सद्गति प्राप्त होऊंगा कुछ विचार नहीं करता कर सकता हूं इतना बदम हूं अधम हूं। कहते जस श्रेयम मेरे लिए जो श्रेय है श्रेय वस्तु उसी को उपदेश कीजिए शोधन कीजिए शिष्य साधिमान मुझे शुद्ध बनाइए शोधन कीजिए मैं आपकी चरण में प्रपन्न होता हूं। यही है गुरु की पादपद्मी में संपूर्ण शरणार्थी लाभ होना चाहिए। नहीं तो कभी हम लोग भक्ति प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जो भक्ति महिमा हम लोग श्रवण करें तभी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं अधिक नहीं बोलना चाहता हूँ कि ये गुरुदेव की पादपद्मी से हम हरिकथा श्रवण कर रहे हैं तो गुरुदेव की पादपद्मी में आशीर्वाद ग्रहण करें तो हमारी जन्म सार्थक है तो हम लोग ये जन्म लेना हमारा जन्म सार्थक है। इतना कह करके अपने वक्तव्य शिष्ट करता हूँ।
कृष्णदास कृष्णदास एक तो कीर्तन कर दो
जगा दे नहीं अभी। माइक बनी, माइक चालू करो भाई, ये माइक चालू करो। माइक में इस माइक चालू करो।
सचि पुत्रमत्र स्वरूपम् रूपम् तस्य गजपुरीपुरिङ्मा पुरिङ्गोष्ठवाटिम् राधाकुण्डम् गिरिवरमहो राधिका माधवासम् प्राप्तो यस्य पथिति कृपया श्रीगुरुम् तम् नतोऽस्मि। वंशाकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विजे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधेयं नयमां। सप्रथम में अपने परमाराध्यतम ओम विष्णुपाद श्रुत सत्मद्भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि श्रद्धा दंडवती पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। तत्पश्चात सन्यासीगण वैष्णव वैष्णवीगण सज्जन महोदय बड़ी सुंदर रूप से हरिकथा चल रही है। अभी रामानंद संवाद से श्रीमान भक्ति वेदांतीर्थ महाराज जी ने शांत लाइट चली गई। श्रीमान तीर्थ महाराज जी ने शांत दास सख्य बात्सल और मधुर रस का वर्णन और शास्त्रीय विवेचनों के आधार पर किया। उसमें भी गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ और गोपियों में भी राधा जी का प्रेम श्रेष्ठ है ये बतलाने जा रहे थे। आगे कल हमने इसी विषय पर मैं बतला रहा था, पहले शतान भक्त ध्रुव जी का बतलाया, ज्ञानी भक्त प्रहलाद महाराज जी का, शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज जी का, और इसे भी बढ़कर के प्रेमी भक्त हनुमान जी को बताओ। यदि प्रभु की सेवा करनी है तो हनुमान जैसा होना चाहिए। कल हमने कुछ कुछ बतलाया, उनका सारा जीवन एक एक श्वास भगवान की सेवा के लिए है। जिस समय राम रावण का युद्ध हो रहा था, मेघनाद मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, रावण ने देखा है अब हमारे तरफ से लड़ने वाला कौन है, माने कुल का ध्वंस करना चाहता, इसलिए याद है ये हमारा एक बेटा है, उसका नाम मही रावण है। वो सब प्रकार के मायाओं को जानता है, इसलिए याद किया, उसको स्मरण किया, दूत भेजा, वो आया। रावण ने उससे कहा जब मेघनाद मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, सभी मारे गए हैं, अब तुम ही आप हमारे आश्रय हो, तुम ऐसा उपाय करो जिससे कि ये दोनों मारे जाएं और युद्ध समाप्त हो जाए। भाई रावण ने कहा जी कोई चिंता की बात नहीं। वो विभीषण का रूप बना करके रात में आया और राम और लक्ष्मण जी को हरण करके अपने राज्य पाताल लोक में ले गया, और वहां उसी रात में राम लक्ष्मण जी को देवी जी को बलि चढ़ाना चाहता। जब वो लेकर के चला गया लंका से, तो राम के खेमे में बहुत ही दुख होने लगा। कहां ले गया, कौन ले गया, कोई पता नहीं। विभीषण जी के आने के बाद में हनुमान जी को उन्होंने बतलाया जे हमारा रूप केवल मही रावण धारण कर सकता है, और शायद वही आकर के ले गया है। सुन करके हनुमान जी सत वहां गए पाताल लोक में। जब प्रवेश करने लगे तो एक बंदर उनसे युद्ध करने लगा, पहले हमसे युद्ध करके प्रवेश करो। हनुमान जी ने कहा जे तुम कौन हो, तो मैं हनुमान जी का बेटा हूं। अरे हमको बेटा कब हुआ, मैं तो हनुमान हूं। ओ बड़े सौभाग्य की बात है, आज पिताजी से भेंट हुई, जब आप समुद्र लंका जला करके समुद्र में कूदे तो आपसे पसीना आया, पसीने के बूंद से एक मछली उसे ग्रहण कर लिया और उस समय पैदा हुआ। मैं तब से इसका दूत बन करके इसके राज्य की मैं रक्षा करता हूं, आपको जाने नहीं दूंगा। हनुमान ने उसे परास्त करके उसी की पूंछ से उसे बांध दिया, और बांध करके भीतर में गए, देखा जो रात के समय में सारे असुर लोग मही रावण इत्यादि सब जुटे हैं और राम लक्ष्मण को बलि देने के लिए तैयार किया है। लाल कपड़े इत्यादि बांध दिए हैं, पूछ रहे हैं जो तुमको क्या जरूरत है, अंतिम समय में बतलाओ। राम लक्ष्मण एक दूसरे की तरफ में देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इतने में हनुमान जी बहुत सुख स्वरूप धारण करके एक फूल के अंदर में प्रवेश कर गए, और वो फूल देवी के मस्तक पर चढ़ाया गया। चढ़ाने के साथ विराट रूप धारण करके बहुत जोर से गर्जन किया, देवी को पाताल में पहुंचा दिया, और उन्हीं के हथियारों को लेकर के तलवार इत्यादि खड़ग और उनको बलि दे करके स्वाहा कर दिया। फिर राम को लक्ष्मण जी को लेकर के लंका में रणभूमि में पहुंचे, उनको देख करके सब लोग ऐसे ही जी उठे जैसे मृतक व्यक्ति के हृदय में प्राण आ जाते हैं। ऐसे ऐसे सेवाएं करते हैं। किंतु एक बात है, अभी बतला रहे थे चित्त महाराज, जिनकी सेवा में उस ऐश्वर्य भाव उसे प्रसन्न नहीं होते उठे, वो ऐश्वर्य भाव किसको कहते हैं, ऐश्वर्य भाव उसको कहते हैं जो सहजी इस जगत में न हो सके, कोई ऐसा न कर सके। जैसे कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया, ये कृष्ण का ऐश्वर्य भाव है। कालिंदी के जल में कूद पड़े, जहां पर कि पानी खोल रहा था 20 से 8 के समान, दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। इस तरह से कृष्ण के बहुत से अलौकिक कार्य हैं, यह ऐश्वर्य है। हनुमान जी में कुछ ऐश्वर्य का भाव है, अपना जूठा प्रभु को नहीं दे सकते, राम के पलंग पर बैठ करके सो नहीं सकते, उनको गले से लगा नहीं सकते। इस प्रेम में कुछ कमी है। आइए आइए आइए,
समझ आते हैं
सब कुछ चल रहे तो
बस आपका आशीर्वाद।
तो बैठिए, मैं ये सब किस लिए बतला रहा हूं? ये तीर्थ महाराज जी और सब लोग किस लिए बतला रहे हैं? तुम लोग समझो, यदि कृष्ण आकर के कहेंगे ये तुम क्या चाहते हो, कोई घटिया वर्ण मत मानो, इन्हें समझो ये कौन सा प्रेम सबसे श्रेष्ठ है, किसके द्वारा कृष्ण, किस प्रेम से कृष्ण वशीभूत हो जाएंगे, इसलिए विशद रूप से हम लोग बतला रहे हैं। इसलिए सावधानी से सुनेंगे, सब समय सुनने का मौका नहीं मिलेगा। आजकल बहुत से लोग पाठक आते हैं, अंत संत बातें करते, कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। खबरदार, ऐसा साधु संत को मत सुनना। कोई कहेंगे कि मैं भगवान में मिल जाऊंगा, तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म, ऐसे लोगों की बात मत सुनना। गीता भागवत की बात मानते हो, कृष्ण को भगवान मानते हो, राम को भगवान मानते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, ऐसे गुरु या वैष्णव की बात सुनना। तो हनुमान जी प्रेम तो करते हैं, किंतु प्रेम में कुछ ऐश्वर्य भाव है। भगवान को समझते हैं कि अलौकिक ये भगवान है, मनुष्य रूप धारण करने पर भी ये साधारण मनुष्य नहीं है, राम भगवान है। कभी कभी उनको ऐसा, इसलिए उनकी सेवा में कुछ कमी हो जाती है, प्रसन्न तो होते हैं किंतु वशीभूत नहीं हो पाते। दूसरी तरफ अब चलें, पांडव लोग हैं, ये प्रेम पर भक्त कहलाते हैं, इनका प्रेम कुछ ऊंचा है। एक समय नारद जी शंकर जी के पास में गए, बोले शंकर जी इस समय संसार में भगवान का सबसे बड़े भक्त कौन है, मैं उनको दर्शन करना चाहता हूं। शंकर जी बोले यदि भक्त देखना है इंद्रप्रस्थ चले जाओ और अर्जुन के महल में जाना। नारद जी वीणा बजाते हुए वहां गए, घर में प्रवेश करते ही देखा क्या, एक पलंग के ऊपर में कृष्ण और अर्जुन दोनों सोए हुए हैं। अर्जुन का पैर कृष्ण के सिर की तरफ और कृष्ण का पैर अर्जुन के सिर की तरफ उनके छाती से होते हुए गया जा रहा है। अर्जुन के पैर को सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादि पंखे झल रही हैं सेवा कर, और कृष्ण के चरणों को द्रौपदी सेवा कर रही है। और अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 ये निकल रहा है, देख करके स्तंभित हो। हनुमान जी एक पलंग पर राम के साथ में नहीं सो सकते, उनकी तो बात अलग रहे। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भी नहीं सो सकते एक पलंग के ऊपर, भाई हैं किंतु उनमें दास्य भाव। सीता जी उनकी महारानी है, प्रिया है, किंतु उनमें भी दास्य भाव है। राम ने उनको घर से निकाल दिया दो बार, पहली बार लंका न रहते हुए जब रावण पर विजय राम ने पाया उस समय सीता जी को बुलाया गया, भीषण जी उनको ले आए, सेनाओं में सबकी दृष्टि लगी सीता जी को दर्शन करने के लिए। राम ने कहा जब पालकी वहीं पर खड़ी कर दो, रोक दो और सीता जी पैदल आए जो सभी लोग उनको देखे। सीता जी पैदल वहां से आए, राम के सामने आई तो रामचंद्र जी ने कहा बड़े गंभीर होकर के, देखो तुम्हारे लिए मैंने रावण को वध नहीं किया, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय की स्त्री को कोई अपहरण करके ले जाए उसे नहीं सह सकता, इसलिए क्षत्रियों की आन की रक्षा करने के लिए मैंने रावण को मारा, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ, हमारे पास रहने की जरूरत नहीं। लक्ष्मण जी तो बड़े बिगड़ गए। उस समय सीता जी ने लक्ष्मण को कहा चीता लगा दो, लक्ष्मण जी बेचारे क्या करते, सेवक चीता लगा दी, लकड़ी उकड़ी सब लगा करके और सीता जी उस पर बैठ करके अपने शरीर से आग निकाला और चीता जलने लगी। उस समय अग्निदेव सीता जी को लेकर के प्रकट हुए, बोले जे सीता जी पवित्र हैं आप इन्हें ग्रहण करें। उसमें महाराज दशरथ इत्यादि भी आए, देवता लोग आए, सब लोगों ने सीता जी को निर्दोष बतलाया। तब रामचंद्र जी ने, और दूसरी बात आप लोग जानते हैं, एक धोबी के कहने से सीता जी को जीवन भर के लिए त्याग कर दिया। राधा जी को त्याग कर सकते हैं, त्याग करने की तो बात क्या कल्पना भी नहीं कर सकते, बल्कि राधा जी की दासियां कृष्ण को कहेंगी जे काले तुम यहां से निकल जाओ, तुम इस काले कुंज में मत आना। राधा जी ने तुमको मना किया है आने के लिए, दूर हो जाओ, और कृष्ण उनकी गोपियों की पहियां पड़ते। सीता जी को तो रामचंद्र जी अपने महल में रह करके खिलाते पिलाते थे, किसी गोपी को कृष्ण अपने घर में रखते हैं, आइया रहती हैं, कृष्ण उनको खिलाते पिलाते कपड़ा देते हैं, नहीं, बस प्रेम का संबंध है, उस प्रेम से वशीभूत है। सीता के प्रेम से प्रसन्न होते हैं किंतु वशीभूत नहीं होते, किंतु इन गोपियों के और विशेष करके राधा जी के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, नाचते हैं उनके लिए, कहते हैं कि न पारे हम निर्वत्त संजुजा, मैं तुम्हारा ऋण नहीं शोधन कर सकता, तुम लोग जैसे सब कुछ छोड़ करके, पति को छोड़ करके, पुत्र को छोड़ करके, सब शरीर की माया ममता मोह सब छोड़ करके हमारे पास में आई है, मैं तो किसी भक्त का त्याग नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे ऋण से उल नहीं हो सकता है, तुम लोग स्वयं मुझे ऋण कर दो, दूसरी बात अन्यथा। इसलिए गोपियों के प्रेम की इतनी महिमा है। तो
हनुमान जी के प्रेम में एज वश, उस प्रेम से प्रभु प्रसन्न होने पर भी वशीभूत नहीं। किंतु पांडवों का अभी बतलाया ना, उनका पांडवों का कैसा। एक समय दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास द्वारका गए, महाभारत युद्ध होने वाला था, आप हमारे तरफ से युद्ध कीजिए, आप हमारे तरफ से इसी के लिए गए। कृष्ण उस समय पलंग पर सो रहे थे, दुर्योधन आगे पहुंचा और कहा जे सिर पैर की तरफ मैं क्यों बैठूंगा, मैं तो राजा हूं। इसलिए वो सिरहाने बैठ गया, अर्जुन पीछे आए और वो पैर की तरफ में पैरों पर की तरफ में बैठ गए। कृष्ण झट उठे तो देखा, अरे अर्जुन किस लिए इतना सवेरे कैसे आया। दुर्योधन बोल जे प्रभु मैं पहले आया हूं। ओ तुम पहले आए हो, किस लिए आया, अच्छा बतलाओ। महाभारत युद्ध होगा, उसमें आप अपनी सेनाओं के साथ में हमारे पक्ष से लड़िए। कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम आए हो आगे, तुम्हारे मांगने का अधिकार है आगे। एक तरफ में हमारी नारायणी सेना है और वो लड़ेगी, और मैं लड़ूंगा नहीं, अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लड़ूंगा नहीं, दोनों में से किसी एक को ले। दुर्योधन ने सोचा नारायणी सेना अच्छी है क्योंकि लड़ेगी ना, और कृष्ण ठूठे हाथ रहेंगे, अस्त्र धारण नहीं करेंगे, उनको लेकर के क्या होगा। तो उसने कहा कि हमको नारायणी सेना दीजिए, और वो राजा से जाओ नारायणी सेना तुमको दे दिया। कृतवर्मा उसका सेनापति था, उस सब के साथ उस सेनाओं को दी। अर्जुन बोले जे प्रभु आज तो मैं बच गया, यदि आप दुर्योधन के पक्ष में हो जाते तो मैं मर जाता, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, आप की जरूरत, हमारे मनोरथ मन रूपी रथ पर आप सारथी बने, जहां आप रहेंगे वहां पर विजय होगी मैं जानता हूं। कृष्ण बड़े खुश हो गए, कृष्ण के साथ कृष्ण उनके सारथी बने, घोड़ों को धोते थे, अभी बतलाया ना, अरे घोड़ों के पैर दबाते थे, थक गए हैं। अर्जुन की सेवा क्या, अर्जुन के घोड़े पशु पक्षी जो कुछ है नौकर चाकर सबकी सेवा कृष्ण करना चाहते हैं, और उसमें आघाते नहीं है। इस तरह से वही नहीं, इसी समय में अर्जुन द्वारका गए, कृष्ण की बहन बलदेव जी के बहन सुभद्रा देवी विवाह योग्य हो गई थी, उनके लिए बड़ ढूंढे जा रहे थे। बलदेव जी ने मन ही मन में इच्छा की दुर्योधन के साथ में अपनी बहन की शादी करूंगा, किंतु वसुदेव जी देवकी कृष्ण और सब लोग चाहते थे सुभद्रा की बहन शादी अर्जुन से। इसलिए अर्जुन से कुछ विचार किया, इसके बाद में अर्जुन वेश बदल कर हम लोगों जैसा त्रिदंड वेश धारण करके संन्यास का दंड लेकर के द्वारका में पहुंच गए, और गोमती समुद्र के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वहीं पर भजन कर कृष्ण आकर के उनको प्रणाम किया, और सब जितने हैं द्वारकापुरी के लोग उनको साधु मान करके उनको प्रणाम करने लगे। बलदेव जी भी उन महिमा सुन करके जो एक साधु आया है त्रिदंडी सन्यासी बहुत बड़ा भक्त है वो भी आए, और सुभद्रा जी को मालूम था 16 श्रृंगार करके और देवी की पूजा करने के लिए मंदिर में बाहर में गई, सेनाओं से घिरी हुई थी। और उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन ने क्या किया, पूजन करने के साथ ही साथ में उनको खींच लिया और रथ के ऊपर में चढ़ा दिया और घोड़ों की बागडोर सुभद्रा के हाथ में दे दिया। सुभद्रा रथ चलाने लगी और अर्जुन धनुष बाण लेकर के अब खड़े हो गए। जो लोग आए उनको हरा दिया। बलदेव जी को पता लगा, हल मूसल लेकर के दौड़े। कृष्ण ने कहा जी कहां जा रहे हैं भैया, अब तो सुभद्रा का हरण कर लिया अर्जुन ने। मैंने कौन सी बड़ी भारी बात हुई, हमने तो रुक्मिणी का हरण ऐसे कि आप युद्ध में क्यों गए और हमारा पक्ष लिया। और सांब भी दुर्योधन की लड़की से प्रेम किया, उसके घर में गया और उसमें पांडवों ने उन्हें हराया, तो आप उनको रक्षा करने के लिए क्यों गए। वीर पुरुषों का ऐसा ही है, वो तो पहले क्यों नहीं बतलाया, तुम लोगों की इच्छा थी तो। कृष्ण ने कहा जे देखो कौन किसको हरण किया, रथ कौन चला रहा है, घोड़ा कौन हाँक रहा है, तो सुभद्रा। तो सुभद्रा ही तो कृष्ण अर्जुन को अपहरण करके ले जा रही है। यदि अर्जुन को मारोगे तो वो विधवा हो जाएगी, तो अपनी बहन को विधवा देखना चाहते हो। इस तरह से बलदेव जी नम्र हुए और फिर उनको बुला करके वहीं पर बहुत अच्छी तरह से शादी। कृष्ण यहां तक कि साले भी बनते हैं। एक कीर्तन हो तो एक कीर्तन कर दो।
पार करेंगे,
अरे दूसरा कोई ब्रज का कोई कीर्तन करो, ब्रज का कोई
मैं तो ब्रज की गलियां में
कहना Yeah.
पांडवों की विशेष करके अर्जुन की भक्ति की बात बतला रहे। ऐसे ही महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, महारानी द्रौपदी और कुंती का भी प्रेम कृष्ण के प्रति था, किंतु एक बात है, प्रेम ऊंचा इतना ऊंचा होने पर भी कहां उसमें कुछ त्रुटि है ये समझना है। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में विश्वरूप दिखलाया। विश्वरूप देखते ही भीष्म अर्जुन ने क्या देखा, उनके दांतों तले दोनों तरफ की सारी सेनाएं, खुद अर्जुन भी, भीष्म, द्रोण, कर्ण सब उनके दांतों तले मरे हुए हैं। आश्चर्यचकित हो देखा जो सारा विश्व ब्रह्मांड उनके मुख में है, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कांपने लगे, बोले प्रभो मैंने आपको सखा कहा, मित्र कहा, घोड़े रथ को चलाने के लिए आदेश दिया, हमने अन्याय किया है, मैं आपको समझ नहीं सकता सका कि आप विश्व ब्रह्मांड के सृष्टि करने वाले हैं, इसलिए आप हमें क्षमा करें, यह रूप मत अब दूर कीजिए और आपका स्वाभाविक रूप जो है वही हमको। तो अर्जुन को उस समय डर हो गया, किंतु ब्रज के सखाओं को कृष्ण ऐसा कर भी नहीं सकते। यदि यशोदा मैया को एक बार मुख दूध पीते समय मुख खोल दिया तो ब्रह्मांड देखा, कहे मुझे क्या कोई देवी लग गई, न भूत लग गया, न मुझे क्या हो गया, फिर आंख को ऐसे कह जो मैं झूठ देख रहा हूं कि सच देख रहा हूं, और अंत में ब्राह्मणों को बुला करके काली गैया का गोबर और मूत्र मिला करके उनको स्नान कराया, अभिषेक कराया और फिर मंत्र से उनको ये सब अर्जुन जैसा नहीं होता, उनके सखाओं को नहीं होता, उस परब्रह्म को आदेश देती हैं, जैसा कहती हैं वैसे चलते हैं। एक लड्डू दूंगी यदि जरा नाचो तो, बाल गोपाल उस समय कृष्ण नंगे और लड्डू के लोभ से इस प्रकार से कर करके तान छोड़ करके और नृत्य करते हैं। कभी कहते हैं जैसे देखो बलदेव में तुम्हें कौन बड़ा है, بلوان ہے، جو جیتے گا اسے لڈو دیں گے، اور کرشن اور بلدیو تال تھوک کر کے لڑتے ہیں پرسپر برج میں، ایسے پربرم ہو کر کے ایسی لیلائیں کرتے ہیں جو اور کہیں ورنداون کو چھوڑ کر کے، برج منڈل کو چھوڑ کر کے اور کہیں سمبھو نہیں. ان ارجن سے خاص رکت کا سمبندھ والے جدوونشی لوگ جادو لوگ سے، اور ان جادوؤں میں مہاراج اگرسین اتیادی ہیں، رانیاں ہیں اگرسین، رکمنی ستبھاما اتیادی، اور ادھو ادھو ان کے پران ہیں کرشن کے. کرشن سوئیں کہتے ہیں کہ آپ تمہارے سمان ہماری آتما نہیں، لکشمی نہیں، ہمارا بھائی جو بلدیو ہے وہ بھی نہیں، میری آتما بھی نہیں ہے جتنے تم ہمارے پری ہو. کیول ان کو ادھو جی کو ہی کرشن یوگیہ سمجھے، اور سمجھ کر کے برج میں بھیجا اپنا پرتنیدھی بنا کر. جہاں اپنا پرتنیدھی بنانے کو کرشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کس کو چنتے ہیں؟ ادھو جی. کرشنا گروکل سے لوٹ کر کے آئے ہیں اور چھت کے اوپر میں چڑھے ہیں، اتر کی دشا کی طرف میں دشٹی کے برج کی یاد آئی، نند اور جسودا کے پریم کی یاد آئی، سکھاؤں کے پریم کی، گوپیوں کی یاد آئی، رونے لگے. اتنے میں ادھو جی کھوجتے کھوجتے اوپر گئے، جس نے ان کے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لے کر کریں ہمارے بیوگ میں ہمارے ماتا پتا مرنے جیسے ہو گئے، ان کو سانتنا جا کر کے. وشیش روپ سے جو برج کی گوپیاں ہیں، منمانا بھو مد بھکتو مدیاجی منمسکرو اتیادی، من کو دینے والی کیول ماتر وشو برہمانڈ میں ایک گوپیاں ہی ہیں. ہمارے بیوگ میں کسی پرکار سے پارن دھارن کر کے آ رہی ہیں، کیونکہ میں نے آتے سمے کہا تھا کل نہ پرسو ضرور میں لوٹ آؤں گا، ہمارے بانی پر وشواس کر کے، اور ابھی تک پران دھارن کیے ہوئے ہیں. گوپیاں تو مر جاتی، کس لیے نہیں مرتی؟ جو ہمارے مرنے کا سماچار سنیں گے، برج میں آئیں گے اور سنیں گے، تو بھی کہیں نہ مر جائیں، اس لیے مرتی نہیں، ان کے پریم کی کوئی تھا نہیں ہے. اس لیے ادھو کو کرشنا برج میں بھیج رہے ہیں. اور بھی ایک کارن ہے، کرشن برج سے چلے آئے ہیں، برجواسی سکھا لوگ، ماتا پتا نند جسودا اتیادی برجواسی، گوپیاں ان کے ویرہ میں چھٹ پھٹ کر گئی. کرشن کو بھی ویرہ ہے، گوپیاں پرسپر اپنا دکھ کہہ کر کے شانت کچھ ہو جاتی ہیں، للتا وشاکھا اتیادی رادھا جی کو سانتنا دیتی ہیں، یشودا میا کو کوئی اور گوپی سانتنا دیتی ہیں، ان کو سانتنا دینے والا کوئی ہے. کنتو کرشن کا دکھ متھرا میں سمجھنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں. کرشن اپنا دکھ کہہ سکے، کرشن کا دکھ اتنت گبھیر ہے. انہوں نے سوچا جی ادھو کو، میں جس پاٹھشالا میں پریم پڑھا، ڈھائی اکشر پریم کا پڑھا سپنڈت ہو، یہ پریم ڈھائی اکشر کا ہے، جس نے اسے پڑھ لیا وہ کرشن کو وشیبھوت کر دے گا. کنتو ابھی اس سنسار میں پریم بدل گیا ہے، مایا ممتا جگت کے اس میں چلا گیا ہے، پاروارک جنوں میں دوسرے میں یہ ممتا لگی ہوئی، اس کو نکال کر کے کرشن میں دینا ہے، तो कृष्ण सोच रहे हैं प्रेम की पाठशाला में, जहां पर गोपियों की पाठशाला में, यहां राधा जी प्रिंसिपल है, ललिता विशाखा एक एक डिपार्टमेंट की प्रेम की प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और गोपियां सब हैं उसमें। तो मैं पढ़ा उसमें उद्धव जी को भेजूं, इसलिए उद्धव जी को भेजा। आएंगे पढ़ करके तब अपने मन की व्यथा विरह में उनसे कह सकूंगा, अभी तो कोई है नहीं। ऐसा सोच करके उद्धव जी को ब्रज में भेजा। अभी समय हो गया है और बाकी मैं कल बतलाऊंगा, आज यहीं तक रहे। गौ प्रेमानंदे खड़े होकर
श्री राधे।